के गाने में वे वर्धमान महान दिन बिच रहे हमारे समय सार परमादम की कर्ता कर्म की गाथाएं चल रही थी, जिसमें 57वीं गाथा पर चर्चा अपन ने कल की थी। अब ये पिछली जो 11 गाथाएं हैं 86 से लेकर 57वें तक, उन गाथाओं के क्योंकि मंदिर के ऊपर 6 कलश चढ़ाते हैं, इसी विषय को कलशों के माध्यम से अत्यंत सरल भाषा में वो व्यक्त कर देते हैं। अज्ञानी आत्मा रागादि भावों का कर्ता कहा जाता है, वो कैसा है ये इस छंद में उदाहरण देकर के उन्होंने कहा है। छंद अपन पढ़ते हैं, छंद है 57वें कलश 57। अज्ञान तस्तु सत्रण व्यवहार कारी ज्ञानम स्वयं कल भवन्नति रज्जते यः पीत्वा दीक्षु मजराम बलसाति गृध्या गाम दोग्धि दोग्ध मे नून मसौ रसालम। हिंदी छंद पढ़ो इसका। हाथियों को तो बेचारे घास ही खाने को मिलता है, गेहूं वगैरह अनाज पैदा होते हैं, मक्की वगैरह अनाज पैदा होते हैं तो उसकी बाल भुट्टे अपन निकाल लेते हैं और उनमें से फिर अनाज अपन निकाल लेते हैं, और बाकी जो हिस्सा बचता है वो घास ही है और वही उसको खाने को देते हैं। अब वो इतना बारीक भेद विज्ञान तो कर नहीं पाता कि इसमें अनाज और घास दो चीजें हैं, उसे तो इतना लंबा पेड़ ही दिखता है, पौधा ही दिखता है। अब कभी उसको भाग से वही घास खेत में खड़ी खाने को मिल जाए, है ना, तो वो सोचता है कि आज की ये घास बहुत मीठी है, जबकि जो मिठास उसको आ रही थी और पुरानी घास से इस घास में जो अंतर दिखाई दे रहा था वो तो अनाज का था, लेकिन वो तो घास को ही समझता है। भले ये घास और अनाज ऐसी वो भाषा ना समझता हो तो उसे वो मीठी घास नाम दे देता है। हाथी जैसा अज्ञानी जानवर ऐसा करता होगा, क्योंकि समझदार लोग तो ऐसा करते नहीं है। देखो आप भी कहते हो ना फीकी चाय और मीठी चाय, आप भी कहां कर पाते हैं कि मिठास जो है इसमें वो चीनी की है, घास की नहीं है, चाय की नहीं है, आपने ही उसके दो वैसे ही हाथी जैसे ही भेद किए ना, कि आज की दाल तो बहुत मीठी है, कल तो बहुत फीकी थी, क्यों? और समझते हैं कि रसोईया कोई बनाने में ऐसी चतुराई करता होगा कि हमने कल कहा था कि चाय बहुत फीकी है तो उसने आज उसको मीठी बना दी। वो ये नहीं जानता कि इसे चीनी ज्यादा डाल दी है। ऐसी ही हालत इस अज्ञानी जीव की है कि देह और आत्मा, राग और आत्मा, इनको मिला हुआ देखता है तो रागी आत्मा ऐसा बोल देता है। आत्मा जुदा है और राग जुदा है, लेकिन वो उस आत्मा को ही रागी कह देता है, मान लेता है। और जिनवानी में भी उसे रागी आत्मा कहा है और निश्चय में से कहा है, क्यों? भले ही वो अशुद्ध निश्चय में हो, वो निश्चय नय की परिभाषा तो उस पर पूरी घटित होती है। अशुद्ध तो सिर्फ इसलिए कहा जा रहा है कि वो अशुद्धता के साथ अभेद किया है, शुद्ध पर्याय के साथ अभेद करते तो शुद्ध निश्चय नय कह देते। एक देश शुद्ध पर्याय के साथ अभेद करते तो एक देश शुद्ध निश्चय नय कह देते, पूर्ण निर्मल पर्याय के साथ अभेद करते तो उसे साक्षात शुद्ध निश्चय नहीं कह देते। ख्याल में ना, लेकिन जिनवाणी में निश्चय नय से कहा है। वो ये तीनों नय जनजनी साहब ये पर्याय से अभेद को के कारण इन्हें निश्चय नाम प्राप्त हुआ है। भेद सो निश्चय और अभेद, अभेद सो व्यवहार और अभेद सो निश्चय, तो इन पर्यायों से आत्मा को अभेद कहा। ख्याल में है ना, इसलिए यहां इसको निश्चय कहा। तो निश्चय नय की परिभाषा इन तीनों में एक सी घटित होती है। पर्याय से अभेद वाली परिभाषा, चाहे वो साक्षात शुद्ध निश्चय न हो, चाहे वो एक देश शुद्ध निश्चय न हो, और चाहे वो अभेद जन्म अशुद्ध निश्चय न हो, तो अशुद्ध नाम तो उसे अशुद्ध पर्याय से अभेद है इसलिए कहा। ये भेद सिर्फ इसलिए डाला, लेकिन निश्चय की जो बात है वो तो उसने उतनी ही महत्वपूर्ण है। कितनी? कि जितनी यहां मानी जाती है। तो वो कहते हैं यहां पर अपन ने उदाहरण देह का नहीं दिया, आप समझे ना। वैसे देह पे भी घटित कर सकते हैं, लेकिन आचार्य देव पिछली गाथाओं में आश्रव भाव माने विकार, मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति, इन तीन प्रकार के उपयोग क्यों, इनसे ही की चर्चा करते आए हैं। इसलिए उन्हीं गाथा का कलश है कि देह के साथ कैसे बताते। बोलो क्या नाम तेरा? देह के साथ कैसे बताते? अनिल। बोलो अनिल, क्या देह के साथ देह ही ऐसा कहते? शास्त्रों में है इसका प्रयोग। देह में रहने वाले आत्मा को देही कहते कि नहीं? विदेह में पैदा हुई सीता को वैदेही कहते कि नहीं? समझे? तो मेरे कहने का मतलब शरीर के साथ भी अभेद कहा जा सकता है, लेकिन शरीर के साथ अभेद बताने वाले को कहीं निश्चय ने नहीं कहा। क्या? तो राग के साथ एकत्र बताने वाले को निश्चय ने में लिया, वो देह के साथ एकत्र बताने वाले को क्यों नहीं लिया? बोलो अध्यात्म। क्योंकि असद्भूत व्यवहार को नहीं लिया जा सकता, सद्भूत को लिया जा सकता है। वो सद्भूत का कथन है और ये असद्भूत का कथन है। एक बात और समझ लो, इस सद्भूत और असद्भूत का असली फर्क क्या है, एक लाइन में कहना हो तो जब पर के साथ अभेद बताएं, पर द्रव्य के साथ, तो उसको बोलते हैं असद्भूत व्यवहार, और अपने में भेद करें तो उसे बोलते हैं सद्भूत व्यवहार। देखो उसमें अभेद शब्द ध्यान देना, पर के साथ अभेद करने को व्यवहार बोलते हैं और अपने में भेद करने को व्यवहार बोलते हैं, इसलिए सद्भूत को भेद व्यवहार भी कहते हैं। और सद्भूत के दो भेद भी किए जाते हैं, शुद्ध सद्भूत और अशुद्ध सद्भूत। शुद्ध सद्भूत माने क्या, कि जब शुद्ध परिणामों का कर्ता कहें तो शुद्ध सद्भूत, गुण भेद करें तो शुद्ध सद्भूत, और अशुद्ध परिणामों के साथ भेद खड़ा करें तो अशुद्ध सद्भूत, तो एकदम अगेंस्ट है। पर के साथ भिन्नता है वस्तु स्वभाव में और अपने साथ अभिन्नता है, अखंडता है। टोटा मरी ने लिखा ना, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ऐसा भगवान आत्मा, तो ये इनको खंडित, पर से भिन्न और अपने से अभिन्न, ये अनंत गुणों में अभेद, अपनी निर्मल पर्यायों से अभेद, ऐसे आत्मा की जब बात करते हैं ख्याल में आई ना, तो पर से भेद दिखाना ये भेद विज्ञान है। पर भेद हर जगह भेद दिखाना भेद विज्ञान नहीं है, कई जगह भेद का निषेध करना भी भेद विज्ञान है, क्योंकि भेद का अर्थ विकल्प भी होता है। बसंत भाई ये जो है ना 47 नए, उनमें जो विकल्प नए और अविकल्प नए हैं उनके दूसरे नाम भेद नए और अभेद नए भी हो सकते हैं, वो लिखा है मैंने उसमें, नए चक्र में आता ना 47 नयों में। भेद माने विकल्प भी होता है, भेद माने विशेष भी होता है, भेद माने पर्याय भी होता है, भेद के बहुत अर्थ होते हैं, विशेष के बहुत अर्थ होते हैं, तो कहां क्या अर्थ लेना। तो नाज सम्मिलित घास को, तो इनके उदाहरण तो दो द्रव्यों का दिया है, अनाज और घास, क्यों, पर यहां आप रागादि को क्यों जोड़ रहे हैं इसके बीच में, तो पर द्रव्य को जोड़ो। कहते भैया ऐसा नहीं है, वो अनाज उसी घास में पैदा हुआ है, वो उस घास का ही अंग है। घास का उसे घास क्यों कहते हो, पौधा का हो, पेड़ और पौधे में क्या फर्क होता है जानता है, पता, पेड़ और पौधे में क्या फर्क होता है। देखो भाई जानते तो आप सब हैं, मैं भी जानता हूं, लेकिन उसे परिभाषा देना, उसे भाषा में व्यक्त करना, जो छोटा हो वो पेड़ और जो बड़ा हो वो, छोटा हो वो पौधा और बड़ा हो वो पेड़, ये बात सही नहीं है। पेड़ भी छोटा हो सकता है और कभी पेड़ से बड़ा पौधा हो सकता है, तो क्या है बोलो देवेंद्र जी, जो एक बार फल दे और मर जाए सूख जाए वो पौधा, और जो बार बार फल दे वो पेड़। परिभाषा समझ में आई क्या महीना, एक बार फल दे वो पौधा और जो बार बार फल दे वो पेड़, छोटे बड़े से कोई लेना देना नहीं है, समझे ना। जितने भी अनाज पैदा होते हैं, जितने भी फल पैदा होते हैं, फल माने फल नहीं कहना चाहिए, अभी इसमें भेद पड़ेगा, क्योंकि फल तो आम भी है, जो बार बार फल देता है, पेड़ में भी लगते हैं और लौकी भी है। जो जो, जो बेल, बेल पौधा है और वृक्ष पेड़ है, आप समझे, वहां ऐसा लगाना पड़ेगा। आप समझे, वो परिभाषा तब घटित होगी ना, ज्ञान चंदी क्या है? ये हमारे अनाज हैं, ये सब पौधों में लगते हैं, इसलिए घास पौधों की बनती है। तो वो अनाज और घास, अब इन दोनों का एक नाम हमें देना हो तो क्या नाम देंगे? पौधा। वो उसी का अंग है, और राग आत्मा में पैदा हुआ। राग, राग माने मिथ्यात्व, अज्ञान और अवृत्ति, ये तीन की अपन ने 7 दिन में खूब रटाई करी है, भूल मत जाना। चाहे हम राग कहें, चाहे हम क्रोध कहें, चाहे हम अज्ञान कहें, चाहे हम मिथ्यात्व कहें, उसमें सब ले लेना, ख्याल नहीं? लेकिन सब जगह नहीं, सिर्फ इस जगह ही। सुरेश को श्रीपाल सिर्फ नाटक की स्टेज पर, नाटक जब में बैठे हैं वो देख रहे हैं, तब तक ही कहा जा सकता है और माना भी जा सकता है व्यवहार से। लेकिन वो सुरेश आकर बाहर भी श्रीपाल बना रहे तो दो चांदे पड़ेंगे, क्या है? ख्याल में आई ना? वो स्टेज से उतरते ही उसे सुरेश बनना पड़ेगा, ख्याल में आई ना? ऐसे ही उस, जब उस मर्यादा के भीतर की ये बात है, तो घास सम्मिलित नाज को जो खावे गजराज, मैंने भेद विज्ञान नहीं करता है, और भिन्न स्वाद जाने नहीं समझे मीठी घास। अज्ञानियों की हालत तो ऐसी है कि वे तो मीठी चाय और फीकी चाय के भेद से भेद करते हैं, और ज्ञानी क्या करते हैं? वही चाय ज्ञानी भी पीते हैं, ध्यान से सुनना जरा, और भाषा भी वही बोलते हैं कि चाय बहुत मीठी हो गई। लेकिन वे उसी समय उनके श्रद्धा और ज्ञान की लब्धि, ज्ञान और अनुभूति, मतलब समझे तारत्र में, तीनों में ये बहुत अच्छी तरह मालूम है कि ये मिठास घाए चाय की नहीं, चीनी की है। अब थोड़ी और बारीकी में इसमें जाएं। पहला उदाहरण कल ही मेरे घर में घटित हुआ, वो आपको बताता हूं। एक आदमी बिना चीनी की चाय पीते थे, मैंने फीकी चाय पीते थे, तो उन्हें जो हमारे घर में चाय दी गई वो मीठी थी। तो वो पड़ोसी से बोले कि भाई साहब, ये मेरी वो चाय आपकी बदल गई है, क्योंकि ये चाय मीठी मेरे पास आ गई और फीकी तुम्हारे पास चली गई। उन्होंने कहा मेरी तो मीठी है, क्यों? क्या? मेरी तो मीठी है, मेरी बदली तो नहीं है, तो क्या होगा? तो रसोईया भूल गया होगा। तो रसोई बोले मैं तो नहीं भूला हूं कि इसमें चीनी नहीं, वो चीनी का सब्स्टिट्यूट आता है ना, ये डायबिटीज वाले लेते हैं, वो डाला गया है, अपन को भी पता नहीं क्यों। अच्छा था वो है तो ठीक है, ये तो मीठी चाय नहीं है। अब मीठी है कि नहीं है बोलो, यानी उस मिठास में भी दो भेद है, क्यों? कौन से? दोनों मीठी है, और एक डायबिटीज वाला घास पी सकता है और दूसरा डायबिटीज वाला, तो ये उसे सबको ख्याल में है कि नहीं है? तो समझ लो कि वो हाथी, हाथी का उदाहरण क्यों दिया, आदमी का क्यों नहीं दिया? क्योंकि हाथी का उदाहरण, आदमी का उदाहरण हमें ज्ञानी से देना है। जैसे वो ज्ञानी बराबर जानता है कि ये राग का काम है, ये मिथ्यात्व का काम है, ये इसका काम है, ये इसका काम है, ख्याल में आई ना? वो सब समझता है, वो समझता है कि मुझे राग आ रहा है और मुझे गुस्सा आ गया क्यों, ये फीकी चाय आ गई, ख्याल में आई ना? तो वो जानता है कि ये गुस्सा अलग चीज है और मैं अलग चीज हूं, बस खत्म। उसके सम्यक दृष्टि बने रहने के लिए उसे ज्ञानी बने रहने के लिए वो गुस्सा नहीं आना जरूरी नहीं है, घबराना नहीं। गुस्सा मैं नहीं हूं ऐसी मान्यता, ऐसा ज्ञान और ऐसी वृत्ति रहना जरूरी है। भैया पता नहीं लगा सकते हो, शास्त्रीय परिभाषाओं में समझ लेना अलग बात है। कोई अनंतानुबंधी की कसाय वाला जिसके अनंतानुबंधी मौजूद है ऐसा हो कि आपको पूरा अकसाई दिखे और लोग बारे उसे कसाई माने ही नहीं। द्रिवलिंगी मुनि का उदाहरण आता है, टोडरमल जी ने लिखा है कि और वो ऐसा छल से नहीं करता, क्यों छल से करे तो नौवें गरीब एक तक कैसे जाए, लिखा क्या नहीं लिखा। लेकिन वो अनंतानुबंध जी का कसाई यह इतनी मंद कसा शुक्ल लेसा होने पर भी घबराना नहीं। शुक्ल लेसा क्यों? क्योंकि वो जहां गया है नौवें गरीब एक में वहां कौन सी लेसा है, गांधी जी शुक्ल है ना, तो यहां शुक्ल नहीं होती तो वहां कैसे पहुंच जाता है। शुक्ल लेसा के काल में भी वो अनंतानुबंध जी के कसाय वाला है और भरत चक्रवर्ती जैसा आदमी जिसके अनंतानुबंध जी कसाय नहीं है अप्रत्याखाना बहन के उदय में भाई पर चक्र चला सकता है। क्या तुम्हें तो एक चक्र चलाना दिखता है, तो थोड़ी पूरी कहानी बताऊं ना दो ही मिनट की। अरे वो तो क्या है, सौतेला भाई था, सौतेला भाई तो शत्रु होता ही है, उसमें क्या गजब हो गया। लेकिन जो सगे भाई थे 99, क्यों सगे छोटे भाई 99 थे या नहीं थे, और एक से एक योग्यतम अयोग्य नहीं थे क्या? उनकी योग्यता का परिचय दूं? कोई तो उनमें ऐसा था कि जो आदिनाथ से भी पहले मोक्ष चला गया, कोई ऐसा था जो ऋषभ देव का सबसे पहला गणधर बना ऋषभ सेन, और जिसने एक दिन का एक मिनट का व्याख्यान जो प्रवचन हुए ना किनके ऋषभ देव के जिमिध्वनि उनको नहीं छोड़ा था, क्यों ठीक है ना। ऐसे ऐसे योग्यतम भाई उनको भी तो वही आदेश भेजा था, वही दूत गया था, वही आदेश तो सुनाया था, क्यों और उन्हें भी स्वीकार हो गया था, ऐसा नहीं है। बस फर्क इतना है कि वे जान ठोक के सामने नहीं आए बाहुबली जैसे। बाहुबली आ गए क्योंकि उन्हें कई दफे हराया था खेल खेल में कुश्ती में, वे तो समझते थे कि हमारा कहा नंबर लगता है, हमारी तो वहां पिटाई हो जाएगी जाएंगे, हम तो गारंटी से ही हारने वाले हैं, इसलिए न्याय की वो लेकर के सर्वोच्च अदालत में गए थे आदिनाथ भगवान के पास कि साहब आप देखे आए थे वो छीन रहा है, क्यों है? क्या जवाब दिया था आदिनाथ ने, बोलो भगवान जी ऐसी बातों करने के लिए ऐसे प्रश्नों का जवाब देने के लिए समझदारों के पास फुर्सत नहीं है, कोई जवाब नहीं, आता नहीं होगा। मेरे प्रश्न का उत्तर आता नहीं होगा। बोलो अनूप। इंद्र ने कहा कि भैया तुम चुपचाप चले जाओ, यदि तुम्हें घर में रहना है राज करना है तो चुपचाप उनकी आधीनता स्वीकार कर लो, हाथ से रहना खाना ही नहीं, और नहीं है स्वीकार तो यहां आए हो ना तो सदैव जवाब देंगे, ये बोलो कि हमें दीक्षा दे दो। क्यों समझ गए ना, या तो दीक्षा ले लो या तो दास स्वीकार कर लो है। बड़ी अदालत में भी सुनवाई नहीं हुई, क्या हुआ है? उनके साथ भी वैसे ही व्यवहार किया था किसने, आप समझ में आए ना कि बाहर से आप क्या नाप करोगे भाई साहब कसाई का और अकसाई का। हम तो बहुत गदगद होते हैं किसी विद्वान से पूछें कि भैया वो तुम्हें इतनी गालियां देता है तो तुम चुप रहते हो बोलते ही नहीं हो क्यों, कि भाई साहब क्या बात करते हो, वो हाथी हाथी नहीं जब वो चले और कुत्ते ना भौंके, और बे कुत्ते कुत्ते नहीं कि हाथी निकले और बे ना भौंके, और वो हाथी हाथी नहीं कि भौंकते हुए कुत्ते को देखकर पीछे को देख क्यों, क्या महान संत है, देखो तो कितना उत्तर विचार है। अरे उत्तर विचार है कि उसने उसे कुत्ता कह दिया और क्या हुआ, अब ये अच्छे हैं, ये विचार बढ़िया है क्यों, बोलो कुत्ता कह दिया है लेकिन कुत्ता कहने के लिए खुद को हाथी बनना पड़ा, ये भूल गया वो। जब किसी दूसरे पे उंगली उठाते हैं ना तो एक उंगली दूसरे की तरफ उठाते हैं तो ये तीन उंगलियां अपनी तरफ उठती हैं, समझ में आया कि नहीं, ऐसा समझ में आया, देख ला एक तुम्हारी तरफ उठाई तो ये तीन मेरी तरफ उठी ना, चार उठाने के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा तो आशीर्वाद हो जाएगा, एक ही है ना, कुत्ता कहना पड़ा, कुत्ता कहने के लिए हाथी बनना पड़ा, ये भूल गया। नहीं हाथी तो बहुत महान होता है, होता तो त्रेम से ही है ना, तो तुम्हें पशु बनना तो स्वीकार हो ही गया, क्यों आदमी से पशु तो बने ही गए, दूसरे को कुत्ते नाम का पशु बनाया तो अपन हाथी नाम के पशु बन गए, तो कितनी कितनी सभ्य, ये सभ्यता का विकास ज्यादा हो गया ना, तो बहुत एक कसाय भी अत्यंत सुशब्द भाषा में निकलती है समझदारों की, हम लेस्या को वास्तव में समझते हैं, लेस्या की तो परिभाषा ही ये है, कसाय से अनुरंजित प्रवृत्ति को लेस्या कहते हैं, समझ गए ना, तो देखो जो पहले नरक में जो लेस्या है वो ही तो होगी ना, सम्मिष्टि भी वहां हो तो वो ही होगी कि नहीं, अच्छा और सम्मिष्टि कहां तक होते हैं, कौन से नरक तक होते हैं, सवाल जाने का नहीं है, जाते तो पहले ही तक हैं और होते कहां तक हैं, सातवें तक, अरे जहां तक भी होते होंगे तीसरे तक छठे तक, तो वहां तक वे सम्यक दृष्टि के लेस्या तो वो होगी जो नरक में है उस समय, ऐसा नहीं नरक में सम्यक दृष्टियों की अलग लेस्या बताई हो और मिथ्या दृष्टियों की अलग बताई हो तो करना नियोग वालों से पूछ लेना, समझे ना, यानी लेस्या वही होगी का मतलब ये है कि बाहर से कसाय तो उसकी भी वैसी दिखाई देगी आपको, प्रवृत्ति तो कसाय की वैसी ही होगी, वो डंडा ले लेके मार कर आने वाले हैं ना नरक में सामने वाले, तो वो वहां आपको कसाय मंद नहीं दिखेगी, ये भी जान ठोक करके एक के दो जमाएगा, समझ रहे ना, नहीं तो वहां रह नहीं सकता है कुट पुट के अकेला, लेकिन फिर भी उससे भेद विज्ञान 24 घंटे विद्यमान रहेगा, बहुत कठिन काम है ये समझने के लिए, अब मैं क्या करूं, जो मैं लिखना चाहता हूं मैं लिख नहीं पा रहा हूं, तो बहुत समय चाहिए शांति उसके लिए, और उतना समय निकलता नहीं है, देखो घास अनाज सम्मिलित घास को जो खावे गजराज वो भिन्न स्वाद जाने नहीं, समझे मीठी घास, समझे मीठी घास नाज को ना पहचाने, त्यों अज्ञानी जीव निजातम स्वाद न जाने। समझे मीठी घास, तो घास मीठी है ऐसा समझता है, लेकिन नाज को ना पह, वो अनाज को पहचानता ही नहीं। उसने दो तरह के ही चीज खाई है, कौन सी है वो, ये बिना अनाज की घास और अनाज वाली घास। अकेला अनाज उसी ने कभी खाया ही नहीं है, उसे कभी अकेला अनाज खाने को मिले तो उसे मालूम पड़ेगा ये दो चीजें हैं, ये अनाज है और ये घास है। क्यों? और फिर जब वो घास खाए और उसमें अनाज का स्वाद आए तो वो ये डिसीजन कर सकता है क्या कि ये घास का स्वाद नहीं है, अनाज का स्वाद है। हम सबकी हालत भी यही है, हमने मिर्ची और नमक ये दोनों अकेली कभी खाई नहीं है। खूब तीखी मिर्ची और अकेला नमक ऐसा किसने खाया? इसलिए असली नमक का और असली मिर्ची का स्वाद हम कहां जानते हैं? हमने तो अनाज में मिली हुई नमक, मिला हुआ नमक और मिली हुई मिर्ची ही खाई है। इसलिए हम चरपरी दाल और बिना चरपरी दाल, क्यों? फीकी दाल और मीठी दाल दो तरह की दालें बनती हैं, क्यों है? हम तो दालों को दो प्रकार का जानते हैं। मिर्ची के स्वाद को हमने मिर्ची कहते ही मिर्ची का स्वाद है, भैया मिर्ची का स्वाद तो है मेरी सुनना, लेकिन ये दाल में पड़ी हुई मिर्ची का स्वाद है, असली मिर्ची का स्वाद का तुझे खबर नहीं है। अकेली अकेली मिर्ची खाए तो पता चले। ज्ञानी जन कहते हैं अज्ञानी को ऐसा भेद विज्ञान भी हो जाए, लेकिन अकेली मिर्ची जब तक खा के नहीं देखे तब तक उसे पता नहीं चलेगा। तो अकेले आत्मा का अनुभव करके जब तक वो नहीं देखेगा तब तक असली आत्मा का उसे पता नहीं चलेगा। देह में और राग में मिश्रित आत्मा को ही उसने देखा है और ऐसा भेद विज्ञान कर लिया है। इसमें जो जानना है वो आत्मा है, और जो रूप रस स्पर्श है वो पुद्गल है, और जो गुस्सा आ रहा है ये राग है, ख्याल में है ना? नहीं, ऐसी ऐसा भाषा में जानता है, लेकिन वो आत्मा को मिर्ची को अकेली चखे तो मिर्ची का स्वाद मालूम पड़े। अब मिर्चियां भी कई तरह की होती है भाई, एक शिमला मिर्ची भी मिर्ची है। क्या शिमला में मिर्ची होती होगी? वो हम तो अमेरिका में भी देखी, वो शिमला से जाती होगी, वहां तो कुछ अलग नाम है, कैप्सिकम कैप्सिकम क्या बोलते हैं वहां, तो शिमला मिर्ची नहीं कहते हैं अपने, वो शिमला मिर्ची कैसे हो गई? हमारे दिमाग में घुसा हुआ है शिमला माने ठंडा, कभी देखा नहीं जाया नहीं, लेकिन अंग्रेज लोग गर्मियों में यहां राज करते थे तो कहते शिमला पहुंच गए। अब राजधानी शिमला पहुंच गई, दिल्ली में नहीं मिलेंगे साहब। तो धीरे धीरे हमारे दिमाग में शिमला माने ठंडी जगह, तो जो हमने चरपरे को मान लिया गर्म, कसम दे रहे पर बिना चरपरी मिश्री को मान लिया ठंडा, और ठंडा का प्रतीक है शिमला, इसलिए हमारे यहां वो शिमला मिर्ची होता है। शिमला मिर्ची खाए और कहे कि मैंने मिर्ची का स्वाद जान लिया तो नहीं, नहीं पता नहीं चलेगा। ऐसे आत्मा भी बहुत है शिमला मिर्ची जैसे, तुलसी जीव है, स्थावर भी जीव है, एक इंद्री भी जीव है, दो इंद्री भी जीव है, जीवों के कितने भेद हैं, मनुष्य जीव है, अनार की जीव है, तो इतने सब जीवों का नहीं, प्योर जीव परम शुद्ध निश्चय का विषय, जो प्योर जीव जब तक उसका स्वाद नहीं जाना तो तुमने समझ ले आत्मा का स्वाद जाना नहीं। वो ज्ञानी ने वो जान लिया है, अब वो धारणा में है उसके बसंत भाई, और जब वो विकल्प बाहर है तो वो धारणा में से निकाल के स्मृति में ला करके वो स्वाद को जान लेता है। और धारणा में है माने प्रगट पर्याय में है। अवग्रह या अवाय धारणा ये पर्याय के भेद हैं, ये ज्ञान स्वभाव के भेद नहीं है। और पर्याय माने होता है प्रगत, उन्हें लब्धि नाम दो, जो भी देना हो नाम दो, समझे ना। जैसे आप अंग्रेजी भाषा भी जानते हैं, संस्कृत भाषा भी जानते हैं, प्राकृत भी जानते हैं, अभी एक भाषा का प्रयोग कर रहे हैं तो दूसरी भाषा आपके है ना, आप उसे लब्धि ज्ञान कहो, तब धारणा ज्ञान कहो, तब किसी में कहो, वो प्रकट रूप से विद्यमान है कि नहीं, कब, जब आपका उपयोग नहीं कर रहे तब भी। समझे मीठी घास नाच को ना पहचाने, क्यों अज्ञानी जीव न जातम स्वाद न जाने, पुण्य पाप में धार एकता शून्य हिया है। अब बोलो काय को बोला, अपन मिथ्यात्व, अवृति और अज्ञान, इन तीनों को यहां पुण्य पाप नाम दिया। पुण्य पाप को धार में धार एकता शून्य हिया है, हृदय उसका शून्य हो गया है आत्मज्ञान से। कैसे शून्य हो गया है? आत्मज्ञान से। अरे शिखरनी पी माने गो दूध पिया है। अब शिखरनी जानते हो आप, इसे बोलते हैं शिखरनी, एक छंद भी होता है जिसमें भगवान महावीर की भक्ति, महावीराष्टक स्तोत्र है। इस पुराने जमाने में दही में और चीनी गुड़, दही दही गुड़ होता, चीनी तो चीन है उस जमाने में, तो उसमें लिखा ना कोमर साहब ने गाथा आती है क्या पंक्ति है वो, दधि गुण मिग्धम, दधि और गुण के मिला हुआ जैसा मिश्र गुणस्थान के लिए आता है, तीसरे गुणस्थान के लिए खट्टा है या मीठा, वो दही भी खट्टा लेना है। आजकल जैसा मीठा दही नहीं, क्यों कहता था मीठा नहीं है दही, शक्कर डाल दे, नहीं नहीं जिसमें खटास पैदा नहीं हुए हो ऐसा दही, क्यों, तो खट्टा दही और मीठा गुड़ उन दोनों को मिला दो तो वे बहुत मादक हो जाते हैं, नशा आ जाता है आलस का, वैसा नशा नहीं आता है शराब जैसा भांग जैसा, वो ऐसे जीव जंतु भी पैदा हो जाते हैं, ऐसी बात भी नहीं है उसके साथ में, समझिए ना, लेकिन वो मादक हो जाती है, मादक हो जाता है तो आलस आने लगता है, तो वो प्रवचन भी वैसे ही सुनता है, हाँ 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 बोलता रहता है, क्योंकि लोग समझेंगे मैं सोया नहीं हूं, मैं सब सुन रहा हूं। तो उस वक्त शिखरनी, अब आजकल वो उसका बन गया श्रीखंड, अब तो ना तो वो दही, अब दही में चीनी आ गई, वो श्रीखंड बन गया ना, अब कहते हैं खीर खांड खा करके वो आराम से सो रहा है, कि श्रीखंड खाओ और सो जाओ आराम से, क्योंकि तो शिखरनी पिया तो शिखरनी है और ऐसा समझ रहा है दूध पिया है, तो दूध जैसी ही रहती होगी पतली, वो तो आज जैसा श्रीखंड तुम्हें जमा देते हो ऐसा नहीं, वो तो पतली रहती होगी और पीते होंगे कि वो पीने की चीज थी, ये श्रीखंड तो खाया जाता है, समझे ना, तो अगर मैंने गाय का दूध पिया है, गाय का दूध तो उसमें है, ये पक्की बात है। ऐसे ही राग मिश्रित ज्ञान को कहता है और सुमिंदा मैंने आत्मज्ञान किया है, होता है वो राग मिश्रित ज्ञान। अरे शिखरनी पी माने मैं गो दूध पिया है, कि मैंने गाय का दूध पिया है और पीता है शिखरनी, उसमें खूब डाल के बोलो, वास्तव में जितने भी लोग हैं वे दूध पीते हैं कि शिखरनी, अगले डायबिटीज वालों को छोड़ देना, क्यों छाबड़ा जी नहीं। अभी आप लोग कहेंगे छाबड़ा जी देखो डॉक्टर साहब ने कह दिया तुम शिखरनी पीते हो भाई। अरे हमारे दोस्त ने इसलिए कह दिया, तुमसे कुछ कहने में डर लगता है भले आदमी, हम तो अपना प्रेम प्रदर्शित करते हैं और तुम्हें भलाई बुराई के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। हम किसी की पीठ ठोकते हैं बगल वाले की तो गुस्से में ठोकते हैं, हम तो बहुत प्रेम से ठोकते हैं। क्यों? उसे उसे देश लगता है, भैया हम हाथ जोड़ते हैं, नहीं बोले माफी मांग लेते हैं, क्या सही है। हम किसी को याद करते हैं क्यों तो गुस्से में करते हैं कि प्रेम से बोला। आज आपको ऐसा लगता है कि हम उसकी मजाक उड़ा रहे हैं क्यों है? थावड़ा जी श्रीखंड खाते हैं तो खाते हैं उसमें क्या अरे सभी खाते हैं। मैंने बोला ना छावड़ा जी का नाम हम ले सकते हैं, तुम्हारा लेने में डर लगता है। बिना चीनी के दूध कौन पीता है डायबिटीज के अलावा? इसलिए मैं कहता हूँ डायबिटीज वाले भी पीते हैं, वो तो डायबिटीज की वजह से नहीं पीते हैं। डायबिटीज नहीं होती तो पीते, ऐसी डायबिटीज वाले भी देखे हैं हमने कि मैं तो श्रीखंड खाए बिना नहीं रहूंगा, दो इंजेक्शन और लगा लूंगा। कहते वो कौन सी होती, क्या थी इंसुलेंस के, समझ गए नहीं क्यों? असली तो वो खाए, उनने खाया है श्रीखंड को, श्रीखंड का पूरा पाप मजेदार तो उनको ही लगेगा, क्यों मौत की कीमत पर खाया है उनने, उसमें कितने जीव जंतु थे वो मर गए, इसलिए नहीं लगता है पाप। तेरे अंदर में कितना राग है उसके हिसाब से पाप लगता है भाई साहब। अपने यहां शास्त्रों में उसे अभक्ष कहा है, पांच अभक्षों में वो है। कौन कौन से पांच अभक्ष जानते हैं आप? बहुघात, तिरस्घात, नशाकारक, अनुच्छेद और अनिष्ट। इसकी भी एक कहानी है कि जब मैं ये पांच अभक्ष का पाठ लिखकर गुरुदेव श्री के पास गया और वहां पर अदालत बैठी, रामजी भाई भी और सब लोग बैठे थे, हिम्मत भाई, रामजी भाई, खेमजी भाई सब बैठते थे और हम पाटमी जी, गोटका जी, बोले रामजी भाई बोले कैसे हो सकता है डायबिटीज वाले को चीनी अभक्ष हो गई? कोई एक व्यक्ति के हिसाब से अभक्ष होते हैं? साहब शास्त्र में है नहीं, जिसको डॉक्टर ने घी खाने को मना किया वो घी खाए तो अवक्ष हो गया, तो मांस खाने जैसा हो गया, तिरस्घात जैसा हो गया, गिनाया। मैं क्या करूं, इसमें लिखा है शास्त्र में हटा दो, तो मैंने चार अवक्ष लिख दिए, मेरे बाप का क्या बिगड़ना था। मैं तो सब चीजें गुरुदेव को दिखा दिखा के पास करा करा करके, ज्ञानचंद जी मेरी आधी से ज्यादा किताबें गुरुदेव जब तक जिंदा थे सब पहले सुना सुना करके मैंने पास कराई हैं, बाद में छपाई हैं। सत्य की खोज भी वो तो उपन्यास था, जब पूर्वार्ध लिखा गया था तो मैंने कहा बाबू भाई थे, पादमी जी थे, कहां थे वो पंच कल्याणक था, भैंसी के गांव में बढ़वान में पंच कल्याणक था, हम सब लोग वहां गए थे। तो मैंने कहा चलो तुम सब साथ चलते थे साथ में गुरुदेव को सुनाने के लिए, तो अपने सत्य की खोज भी सुनाएंगे गुरुदेव को। बोले हम नहीं जाएंगे तुम्हारे साथ, तुम्हारी साथ में हमारी भी पिटाई होगी। गुरुदेव को उपन्यास नहीं, हम नहीं, सचमुच कोई नहीं गया। मैं गया 11:30 बजे अकेला, मैंने कहा गुरुदेव मैंने एक किताब लिखी है, कहानी की लिखी है, कहानी मैंने बनाई है, अच्छा सुनाओ। साहब मैंने सुनाई, इतना रस लिया गुरुदेव ने, इतने खुश हुए, खूब खिलखिला के हंसे। जब वो मैंने सारी वो बातें सुनाई जो आपने पढ़ी होगी तो मैं उसको दोहराना नहीं चाहता हूं, और इतना मैं शाबाशी मिली और मैं लौट के आया, हमने कहा पादमी जी जग जीत लिया। क्या हुआ कि गुरुदेव बहुत खुश हुए, समझने। उसके बाद बेंसी की जयंती थी, मैं महीना भर बाद ही, तो हम छुपा छुपू के ले गए और मानव सत्य की खोज का फर्स्ट पार्ट किस दिन प्रकाशित हुआ था, जिस दिन बहन श्री का बचनामृत प्रकाशित हुआ था, एक दिन दोनों का विमोचन सोनगढ़ में हुआ था। वो भी मैंने गुरुदेव को सुनाई, अपना पीएचडी का ग्रंथ पंडित टोडरमल व्यक्तित्व भी फतेहपुर पंच कल्याणक में पूरा सुनाया गुरुदेव को। तो मैं क्या कह रहा था कि भाई वस्तु का स्वरूप क्या है, हमको उसको गहराई से देख के समझने की कोशिश करना चाहिए। वो अभक्ष की बात चल रही थी ना, तो मैंने काट दिया। तो पन्नालाल साहित्याचार्य का और कई पत्र मेरे पास आए कि आपने एक अभक्ष ही उड़ा दिया, पूरी विद्वत परिषद में उनने मीटिंग में रख दिया और विरोध का वातावरण पूरा बन गया और जैन संदेश में लेख आ गए उसके विरोध में। दो छंद दो के विरुद्ध आए थे, एक जो मैंने जिनवाणी सुधी लिखी थी ना, पंत में एक छंद पन्नालाल विनती करे, तो वो छंद नहीं लिखा गया था। तो एक देखो वो छंद उड़ा दिया, क्योंकि डॉक्टर भाई बताना चाहते हैं कि इनने बनाई है। और दूसरा आया था ये कि इनने एक अभक्ष उड़ा दिया। फिर मैं गया वो लेकर के अखबार, फिर राम जी भाई को बताया, गुरुदेव को बताया कि देखो ये शास्त्र में है और ये विरोध हो रहा है, क्या करना बोलो। तो फिर उन्होंने कहा रख दो, और फिर इस तरह से वो मैंने पांच अभक्ष रखे हैं। शास्त्र में तिलक घात के बराबर, मांस खाने के बराबर वो चीज जो आपको स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है और डॉक्टरों ने जिसका निषेध किया है, उतना ही बड़ा पाप है। क्यों? कि जीव तो भले ही उसमें नहीं है, लेकिन तीव्र राग के बिना उसका सेवन संभव नहीं है। हमें डॉक्टरों ने बताया है कि आप जो कुमदिन लेते हैं ना, खून पतला करने की दवाई, तो उनको कोई पत्ती और मटर टमाटर नहीं खाना चाहिए, तो उनमें विटामिन के होता है, वो थक्के बनाते हैं। अब हमारे यहां थोड़ी सी डाल देते, मैं कहते थोड़ी सी। तो मैंने दादा से कहा थोड़ी, ये अभक्ष नाम है, ये कौन सा अभक्ष है? जो डॉक्टर ने मना किया मैं तो उसकी तरफ देखूंगा नहीं, शास्त्र की बात है, मेरे घर की बात है, क्या बात है? हम ये चीज नहीं खाएंगे। फिर दादा नहीं, वो तो मतलब दादा भी खाना चाहिए, थोड़ी बहुत खाना चाहिए, लेकिन शास्त्र के आप बताओ, आपकी डॉक्टर जी के हिसाब से सही बोलना कि नहीं सचमुच हम बोल रहे हैं, वो तो इतना सा थोड़ी वो करोड़ बना देगा कि चलो अब चल इतना चल देगा। आप समझ नहीं, आपको जिस चीज की एलर्जी है, डॉक्टर कहता है ये नहीं खाना, ना नहीं खाना, वो अभक्ष है, ये शास्त्र के हिसाब से है। और इसलिए मैं बताऊं कि सोनगढ़ से ये मंजूर है, इतनी बहस के बाद गुरुदेव के द्वारा, ये कोई मेरे घर की बात नहीं कह रहा हूं मैं आपको, जो वो ये कहते हैं ना कि आप और दो इंजेक्शन ले लूंगा, लेकिन मैं इसमें इसका मजा नहीं छोड़ सकता हूं, कहेगा एक घंटे का, समझ गए ना आपकी बात, वो सिकंजी भी श्रीखंड का ही छोटा रूप है। क्या समझो, देखो अरे सिखंडी पी माने गो दूध पिया है। अब अगला कलश, मैंने बोला ना कि मैं कल तक इच्छा कलश पूरे करना चाहता हूं, पढ़ो भाई अगला कलश, सार दूध विकीर हाँ, अज्ञानात मर्ग कृष्ण काम जल धिया धावंती पातुम मृगा, अज्ञानात तमसी द्रवंती भुजगा, साध्यासेन राज जना, अज्ञानात विकल्प चक्र करणात पातोत्तरांगाभिवत, ज्ञान मया भी स्वयं भी करती भवंता कुला। ये कहते हैं रागादिक का कर्ता बनने वाले, रागादिक माने अज्ञान, वो तीन चीजों का कर्ता बनने वाले अज्ञानी जीव उसी तरह कर्ता बन के आकुलित होते हैं, करती भवन चाकुला कर्ता बन के आकुलित होते हैं। हिंदी का भी पढ़ लो फिर अर्थ करूंगा, अज्ञान से ही Thank you. ये कहते हैं ज्ञानमय है जीव, यद्यपि ये जीव तो ज्ञानमय है, सम्यक दृष्टियों का भी और मिथ्या दृष्टियों का भी। आत्मा में थोड़ी फर्क है, आत्मा तो उनका भी ज्ञानमय है, अपना भी ज्ञानमय है, उनमें भी अनंत गुण है, अपने में भी अनंत गुण है। ज्ञानमय है जीव पर अज्ञान के कारण अहो आश्चर्य है, अहो माने आश्चर्य है कि अज्ञान के कारण बादोद बेलित उधति बक, बहुत तीव्र हवा चले, तूफान है ना, बादोद बेलित उससे उद्वेलित जो समुद्र, उसमें बड़ी बड़ी लहरें आती हैं, और जब वो एकदम तूफान आता है तो बड़ी बड़ी लहरें वो कितना उपद्रव मचा देती है। आपने कभी कभी तो 100-100 फुट ऊंची लहर आती है और सबको बहा ले जाती है। तो बातोत बेलित माने उस तूफान से उद्वेलित समुद्र, यद्यपि समुद्र स्वभाव से एकदम शांत है, जाओ समुद्र तो मीलों गहरा है, 100-200 गज नीचे जाओ फिर देखो बिल्कुल शांत, और उसका पानी बिल्कुल ठंडा ऐसा मिलेगा। अब ऊपर सूर्य की गर्मी से एकदम गर्म हो जाता है और हवा के झोंकों से बहुत उद्वेलित हो जाता है, तो हमने तो आज तक उस उद्वेलित समुद्र को ही देखा है, और सूर्य की गर्मी से तपे हुए समुद्र को ही देखा है, क्योंकि अंदर जाके तो कोई गोताखोर ही जानेंगे ना। ऐसे ही बातोत बेलित माने कर्म के उदय में एक पर्याय के लेवल पर ये आत्मा बहुत उद्वेलित हो जाता है, ख्याल नहीं ना, समुद्र जैसा अंदर, तब भी जैसे अंदर में दरिया शांत पड़ा है तब भी वो शांत पड़ा रहता है। फिर क्या होता है, करती भवन त्याकुला, और उसका कर्ता बन के आकुलित होता है, वो चाहे तो उस समय भी अपने शांत स्वभाव को ही माने और कर्ता नहीं बने तो वो आकुलता नहीं होगी। क्या कह रहे हैं देखो, कसाई के उदय से हमारे अंदर बहुत गुस्सा आ जाए मान अभी वो, लेकिन उतना समझ आनंदानबंदी संबंधी नहीं, वो बात ध्यान में रखना, खूब गुस्सा आ जाए, तीव्र गुस्सा आ जाए, हम कितना ही खूब कहें कितना ही तीव्र कहें, लेकिन वो अप्रत्यक्ष है ना, वर्ण तक कही लेना, क्या अप्रत्यक्ष है ना वर्ण तक का ही लेना। देखो राम को तो सीता चाहिए थी और लक्ष्मण को लंका चाहिए थी, घबराना नहीं, सच्ची कह रहा हूं मैं, वो रावण सीता को देने राजी हो जाता तो राम तो कहते चलो अयोध्या में ले लो सीता जी को चलो, लक्ष्मण कहते कैसे, जिसने हमारी भाभी को इतनी तकलीफ दी उसे धन दिए बिना कैसे जा सकते, और न्यायप्रिय बन जाते नहीं जाते, नहीं जा सकते थे, आप क्या समझते हो। लक्ष्मण जी जहां गए हैं वहां कोई एक दिन की एक बात के कारण नहीं गए, हमने तो कह दिया कि राम का समाचार सुना कि राम मर गए तो एकदम बेहोश होकर मर गए, इतना मोह था इसलिए गए हैं, इतना नहीं है। उनकी परिणति में चाहे जैन रामायण पढ़ लो चाहे अजैन रामायण पढ़ लो, शुरू से अंत तक राम की परिणति में और उनकी परिणति में एक बहुत बड़ा अंतर आपको दिखाई देगा, वो जीवन भर जो अंतर है, ख्याल में आई ना, एकदम वो गुस्सा में उत्तेजित रहे लड़ने भरने में नहीं, अकेली उतनी बात नहीं है भाई साहब। अच्छा बोलो अब मेरे आप में थोड़ा बहस होती है, क्यों जी, यदि कोई मान लेता तो राम से नींद लौट के आ जाते ऐसा हो सकता था, लक्ष्मण तो नारायण थे और नारायण तो उनको मारते ही हैं, नियम ही है नारायण प्रतिनारायण को जीतते हैं, कैसे हो जाता, वो संभव ही नहीं था, वो बात किसी कीमत पर संभव नहीं थी। इसलिए कहते हैं जैसे वो समुद्र आकुलित होता है ऐसे ही अज्ञानी भी पर पदार्थों का कर्ता बन के निरंतर आकुलित होते रहते हैं और ज्ञानी जन आकुलित नहीं होते। इस तरह से इस छंद के माध्यम से भी यही बात उन्होंने कही है कि नीचे की दो पंक्तियों का अर्थ अपन ने भी किया, अगर ऊपर की दो पंक्तियां हैं जो जिनमें उदाहरण दिए हैं इसी बात को, इसकी चर्चा अपन कल के व्याख्यान में करेंगे।